पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर सात। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो वैहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोए सुवसानं, नमेऊणणन्तजिणं अनन्तनाणेन दीर्घसौवट्ठं कम्मपदे सविहत्तिम् वोच्छामि जहागमं पयलो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 28 पर आ गए। अभी हम अंतर की बात देख रहे हैं और उसमें भी जघन्य अंतर, अंतर काल तो समाप्त हुआ था, परंतु उच्चारणाचार्य फिर दोबारा उसको बता रहे हैं। हमने उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का भी अंतर देखा था और जघन्य प्रदेश विभक्ति का भी अंतर देखा था, इसी बात को उच्चारणाचार्य यहाँ बता रहे हैं। उसमें अभी हम विशेषार्थ में आ गए। 28 पृष्ठ पर पढ़ते हैं दूसरी लाइन। गुणित कर्मांश विधि एक बार समाप्त होकर, ये क्या विधि होती है गुणित कर्मांश विधि जब कहते हैं? हमने देखे थे ना वो सारे योगावास, भवावास, अद्धावास, संकलेशावास वगैरह वगैरह, यानी जहां अधिक से अधिक कर्म प्रदेशों का संचय हो जाए, वो पूरी विधि, पूरा प्रोसेस उसको कहेंगे गुणित कर्मांशिक विधि। यानी एक बार वो जीव गुणित कर्मांशिक हो गया तो गुणित कर्मांश विधि एक बार समाप्त होकर पुनः उसके प्रारंभ होने में, ये गुणित वाला कायम गुणित ही रहे ऐसी बात नहीं, पुनः अभी एकेंद्रिय भी चला जाएगा या गुणित कर्मांशिक है तो लंबे काल तक एकेंद्रिय में भी रहेगा, तो पुनः उसके प्रारंभ होने में अनंत काल लगता है। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। इस पर हमने चर्चा भी देखी थी, दूसरा जो मत था असंख्यात लोक वाला, उसकी भी यहाँ चर्चा आई थी। ये मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृति कौन सी है? प्रेरणा बिन आपको याद है? याद यानी हमको केवल उसको सोचना है। मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृति, हाँ देखो उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर, हाँ मिथ्यात्व बराबर है, बोलो उत्कृष्ट का अंतर 12 अगर उसको लेते तो और कौन से रहेंगे? हाँ अनंतानुबंधी 4 संज्वलन पुरुष वेद को तो हमने अलग से देखा था, देखो निकालो मिथ्यात्व 8 कषाय और 8 नौ कषाय 27 पृष्ठ पर। ये देखो ये हम 27 पेज पर जो देख रहे थे, उत्कृष्ट का अंतर देखना है हमें। अब हमें ऐसा सोचना है, हम पेज 28 पर आ गए हैं और मैंने अभी जो रेफरेंस बताया 27 पृष्ठ पर है, जहाँ उच्चारणाचार्य के अनुसार कथन शुरू हुआ है। अंतर दो प्रकार का है,
नंबर जो है
नीचे के पैराग्राफ सेकंड लाइन
आठ लोग इसलिए हम स्त्री और पुरुष में दोनों को छोड़ते हैं तो उसे कहते भी रह सकता हूँ ऐसी बात
नहीं देखो देखो उत्कृष्ट उत्कृष्ट का अंतर देखना है उत्कृष्ट अभी हम ऐसा सोचे संज्वलन का उत्कृष्ट कब होता है जब उसमें संक्रमण होता है क्षपणा में होता है एक बार होने पर दोबारा होगा कि नहीं होगा यानी उत्कृष्ट में अंतर ही नहीं होगा वहां तो जिसमें अंतर हो सकता है ऐसे लेना है यहाँ पर ये पहले वाला अपना जहाँ एक्सप्लेनेशन है वहां निकालो मिथ्यात्व हो गया ना 25 26 पेज पर हमने देखा था वहां मिथ्यात्व का पहले बता चुके 26 पेज पर देखो 25 पेज पर तो मिथ्यात्व की बात बताई उसके उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन वो बता चुके 26 पेज पर जो वहां ऊपर का सूत्र है कहते इसी प्रकार शेष कर्मों का शेष कर्मों में 8 कषाय 8-9 कषाय लिखे वहां पर और उसमें विशेषार्थ जो लिखा है अनंतानुबंधी की अनंतानुबंधी चतुष्क की 8 कषाय 8-9 कषायों के साथ परिगणना न करके उसको अलग से बताया उत्कृष्ट में तो कोई अंतर नहीं है परंतु अनुत्कृष्ट में अंतर है इसलिए अनंतानुबंधी को अलग गिनाया है वैसे अनंतानुबंधी के उत्कृष्ट वाला अंतर भी उतना ही होगा परंतु अनुत्कृष्ट का अलग बताने के लिए उसका ग्रुप अलग बनाया यानी आपने जो 12 कषाय बताया था वो तो बात सही थी परंतु यहाँ 17 में उसको नहीं गिना मिथ्यात्व 8 कषाय 8-9 कषाय को एक साथ रखा अनंतानुबंधी का भी उत्कृष्ट में अंतर उतना ही होगा परंतु उसके अनुत्कृष्ट का अंतर तो विसंजना के अपेक्षा अलग बताया ख्याल में ही बस उसी पेज पर 26 पेज पर नीचे का सूत्र इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व पुरुषवेद 4 संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उसका उत्कृष्ट जो होता है वो क्षपणा में होता है क्षपक श्रेणी में होता है तो फिर दोबारा लौट कर फिर अनुत्कृष्ट तो हो सकता है पर दोबारा उत्कृष्ट नहीं होता देखो मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृतियों की यानी मिथ्यात्व 8 कषाय 8-9 कषाय यानी पुरुष वेद बिना और 8 कषाय में मध्य वाले तो उनकी जो उत्कृष्ट देखो ऊपर लिखा ना हमने विशेषार्थ ही पढ़ती हूँ मैं 28 पेज पर आना अभी विशेषार्थ जो हमने आज शुरू किया था गुणित कर्मांश विधि एक बार समाप्त होकर पुनः उसके प्रारंभ होने में अनंत काल लगता है इसलिए यहाँ मिथ्यात्वादी 17 प्रकृतियों की ये कौन सी 17 मिथ्यात्व 8 कषाय 8-9 कषाय उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए यानी मिथ्यात्व 12 कषाय और 8-9 कषाय ऐसे ही है अनंतानुबंधी को अलग करने का प्रयोजन इतना ही है अनुत्कृष्ट में अंतर मिथ्यात्व आदि का उत्कृष्ट एक समय के लिए होता है तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय होगा परंतु अनंतानुबंधी में तो अनुत्कृष्ट होकर नष्ट हो जाए और फिर जितने काल तक नष्ट रहता है उतने काल तक उसको हम कहेंगे अनुत्कृष्ट का अंतर है।
तो वो नहीं होना भी जो अब तो वो भी अनुत्कृष्ट मिल गया।
हाँ
जीरो है वो भी अनुत्कृष्ट मिल गया।
अनुत्कृष्ट के अंतर में लिया।
अंतर में लिया।
हाँ देखो चौथी लाइन हम पढ़ रहे हैं अभी। तथा मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति एक समय के लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। अभी यहाँ अनंतानुबंधी को अलग निकाला क्योंकि अनुत्कृष्ट में विशेषता है। मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय है। मध्य वाले 8 कषायों का अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय है। 8-9 कषायों का अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय वाला है। बराबर है। अब अनंतानुबंधी चतुष्क 4 संज्वलन और पुरुष वेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय कहने का यही कारण है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व ये उद्वेलना प्रकृति है, यानी अनुत्कृष्ट के जघन्य अंतर में तो कोई विशेषता नहीं है, उसका उत्कृष्ट अंतर है वो अनंतानुबंधी के लिए अलग होगा, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए अलग होगा। तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियां हैं। हमने बात की थी ना उद्वेलना प्रकृतियां, जिनकी उद्वेलना होती है उसको उद्वेलना प्रकृति कहते हैं। सभी प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं हो सकती निश्चित। जो हमने कितनी 13 देखी थी ना, 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है, इसलिए इनका कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक सत्व न पाया जाए यह संभव है। एक बार समय को प्राप्त करके उद्वेलना समाप्त हो गई मिथ्यात्व में आकर, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में कुछ कम है तब वो फिर मनुष्य होगा, समय को प्राप्त करेगा तब उसकी सत्ता फिर बनेगी, तो बीच वाला सारा अंतर कहलाएगा उसका। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय कैसे है भानुबेन? नहीं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट प्रदेश। हाँ एक समय में उद्वेलना थी समाप्त हुई, एक समय के लिए सत्ता नहीं थी और एक समय के बाद उत्तम समय को प्राप्त किया तो सत्ता हुई, तो अनुत्कृष्ट का अंतर हुआ। यानी वो सारे उपशम समय को प्राप्त करने का जो विधि है ना वो पहले से शुरू हुआ, उद्वेलना भी चल रही थी और यहाँ वो सारे उसके 5 लब्धि वगैरह सब चल रहा। हाँ यानी उसके करण लब्धि चल रही थी, नहीं तो कैसे होगा एक समय में? यानी कैसे परिणाम है, यहाँ करण लब्धि भी चल रही है और वहाँ उसकी उद्वेलना जो ऑलरेडी जो ऑन द प्रोसेस है। नहीं परिणाम कुछ नहीं, वो तो होते रहते। हाँ हाँ तो वहाँ उद्वेलना भी चल रही है, यहाँ करण लब्धि में जीव है। वो तो सब में लागू होगा, वो तो सब में तो फिर में भी लागू होगा फिर वही सब।
हाँ
यानी करण लब्धि चल रही है, करण लब्धि का अंतिम समय है, तो अंतिम समय में
नष्ट,
उपांत समय में उद्वेलना पूरी हुई, अंतिम समय में सत्व नहीं है और नेक्स्ट समय में फिर उपशम समय को तो सत्व हो गया, अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय घटित हुआ, समझ में आई बात? और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन, ये तो समझ में आ गया इसी बात।
ये अनिवृत्तिकरण होगा ना, एक समय के लिए सत्ता में नहीं है,
अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में सत्ता में नहीं,
नहीं है,
लास्ट उद्वेलना उसके एक समय पूरे पूर्ण हो गई
और उसके पश्चात सम्यक
प्राप्त, हाँ उपशम समय को प्राप्त किया तो सत्ता हो गई, फिर सम्यक तो सन्मुख की क्या बात, करण लब्धि में प्रविष्ट है, अनिवृत्तिकरण का उपांत समय तक उसकी सत्ता थी। हमने ऐसा भी देखा ना, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में उसका एग्जिस्टेंस है और सत्ता नष्ट हुए बिना ही उसने समय को प्राप्त किया, ऐसा भी हमने देखा। हमें तो अंतर घटित करना है, वहां तो सत्ता लगातार लंबा काल घटित करना है तो उसको लेते हैं, उसको हमने देखा भी था, तीन बार पल्ले का असंख्यात भाग और फिर दो बार 66 साग, यहां हमें तो अंतर घटित करना है। देखो अनंतानुबंधी चतुष्क ये विसंयोजना प्रकृतियां हैं, वो उद्वेलना वाली थी, ये विसंयोजना वाली थी, यहां भी सत्ता नष्ट होती है और फिर दोबारा प्राप्त होती है, वहां उद्वेलना के द्वारा और यहां विसंयोजना के द्वारा, इनका सत्व अधिक से अधिक कुछ कम 266 सागर काल तक नहीं पाया जाता, नहीं की बात चल रही, ये कैसे है, किसी ने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया,
विसंयोजना
की, हाँ विसंयोजना कर दी, वेदक सम्यक तो हुआ, 66 सागर काल तक रहा उसमें, यहाँ लिखा है ना देखो, अधिक से अधिक 266 सागर काल तक, यानी विसंयोजना वाला ही सम्यक मिथ्या तो नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता, हाँ आ सकेगा ना, क्यों नहीं आएगा, और फिर वो सम्यक तो
प्राप्त,
दूसरा 66 सागर
अंत में जाके,
और अंत में जाके फिर संयोजना करानी है ना उसकी, ऐसे क्षपणा करेंगे तो अंतर नहीं घटित होगा, हमें अंतर घटित करना है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण कहा, मिथ्यात्व से इनको अलग बताने का कारण यही है, इसके अनुत्कृष्ट में कुछ विशेषता, वहां अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय ही था, यहाँ अनुत्कृष्ट का अंतर इतना, क्योंकि बीच में सत्ता ही नहीं थी इसलिए अनुत्कृष्ट का अंतर पड़ा, मिथ्यात्व में जो अनुत्कृष्ट का अंतर पड़ता है वो उत्कृष्ट बीच में किया इसलिए पड़ता है, वो लगातार ज्यादा समय नहीं, एक समय से ज्यादा रहता ही नहीं है, और यहाँ जो अंतर है वो सत्ता में से नष्ट हुआ उस अपेक्षा से अंतर का, यही रीजनिंग सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में, उनकी भी सत्ता नष्ट होती है तो अनुत्कृष्ट का अंतर बड़ा हो जाता है, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्व दर्शन मुख की क्षपणा के समय, हमने देखा ना उत्कृष्ट कब होता है, क्षपणा में, तो क्या एक बार उत्कृष्ट होकर दोबारा उत्कृष्ट हो सकता है,
नहीं,
अनुत्कृष्ट का तो अंतर हो सकता है, उत्कृष्ट का नहीं हो सकता, तथा पुरुष वेद और चार संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश तत्व चारित्र मोह की क्षपणा के समय होता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल न प्राप्त होने से उसका निषेध किया, ये बात ख्याल में आई, वैसे अपना हुआ भी था और उच्चारणा चाह रहे हैं, फिर दोबारा शॉर्ट में बताया था, अब यही बात मार्गणाओं में घटित करेंगे, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषायों और 6 9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि एक बार उत्कृष्ट होए दोबारा अनुत्कृष्ट होके फिर उत्कृष्ट हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही समय के लिए उत्कृष्ट है और वो नरक से बाहर निकलने के पहले पहले समय में होता है, नरक के या तो दो मत है ना, या तो नारकी के अंतिम समय में या एक अंतर्मुख पहले, अंतर्मुर्त पहले हुए तो भी बाद में अनुत्कृष्ट रहेगा, नारकी के होते हुए दोबारा
उत्कृष्ट
नहीं होगा। तो दोबारा उत्कृष्ट होने के लिए तो अनंत काल लगेगा, तब तक वो नारकी नहीं रहेगा। अपनी मार्गना चेंज हुए बिना अंतर्घटित करना,
ये सातवें नरक,
इसलिए सातवें नरक में उत्कृष्ट का अंतर नहीं है,
किधर भी नहीं है ना, कोई भी दूसरे नरक में
नहीं होगा। इनकी अनुत्कृष्ट विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। अब अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे घटित करेंगे?
एक समय के लिए
वो अंतर्मूर्त पहले अगर हम उत्कृष्ट मानते हैं तो एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय घटित हुआ। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर काल नहीं है। इनका उत्कृष्ट कब होगा? अब यहाँ कोई क्षपणा का सवाल नहीं है, नारकी है ना, ऐसा ले सकते, गुणित कर्मांशिक रूप से आया है और गुणित कर्मांशिक होने के बदले वो सम्यक तो प्राप्त किया, उसने लास्ट में औपचारिक सम्यक तो प्राप्त किया, तो गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का वहां
ज्यादा से ज्यादा
प्रदेश हो, तो उत्सम समय तो के अंत समय में हो जाएगा।
सातवें नरक में जो गुणित कर्मांशिक होने को जा रहा है,
होने को जा रहा है उसके पहले यानी आयुबंध वगैरह होता है ना, मिथ्यात्व में जाने के पहले उसके औपचारिक समय तो प्राप्त हुआ, औपचारिक कराना। पहले गुणित कर्मांशिक से आया है, उसके पास मैक्सिमम है मिथ्यात्व का द्रव्य, उसने औपचारिक समय तो प्राप्त किया, तो वहाँ गुण संक्रमण हो जाएगा, सम्यक सम्यक नित्यात्व प्रकृतियां तैयार होगी। जितना उपशम का काल है उतने लगातार उसका दोनों का द्रव्य होगा, तो उपशम सम्यक के अंतिम समय में।
और बाकी के छह
संक्रमण का अधिकार लेकर उसका
नहीं नहीं गुण संक्रमण का काल नहीं, गुण संक्रमण तो लेना ही लेना, और पूरा उपशम सम्यक का अंतिम समय लेना। परसों हमने पढ़ा था ना पुस्तक में।
और बाकी के छह नरकों में आयु के शुरुआत में जो गुणित कर्मांशिक वाला आता है,
गुणित कर्मांशिक रीति से जो नरक में पहले समय में आया है,
और अंतर्भूत पश्चात जो समय तो प्राप्त करेगा उसका।
हाँ, हाँ, मगर फिर भी वहाँ पर भी संक्रमण तो है ना, और उसका संचय तो होगा ही, इतना निकलेगा नहीं, वे इतना नहीं है जितना आए है, तो अंतिम समय में, क्योंकि मैंने भी पहले गुण संक्रमण की बात उठाई थी, परंतु फिर हमने उसमें देखा था उपशम सम्यक्त्व का अंतिम समय लिया था। अभी यहाँ कुछ विशेषार्थ में देखेंगे फिर। देखो, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। किसका? अनंतानुबंधी सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। जैसे जहां हमने उत्कृष्ट देखा वो एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ, उसके पहले और पश्चात अनुत्कृष्ट रहे। हाँ, उत्कृष्ट अंतर के लिए उद्वेल नहीं लेना है, उत्कृष्ट अंतर 33 सागर जो बताया है, 33 सागर के शुरू में उद्वेलना पूरी हुई उसकी, यानी नरक में आया है सादी मिथ्या दृष्टि है, आते ही उद्वेलना पूरी हुई, अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हो गया, लास्ट में जाके सम्यक प्राप्त किया तो उसकी सत्ता हो गई, तो उत्कृष्ट अंतर हो कुछ कम 33 सागर। स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर काल नहीं है, क्योंकि वो अंतिम समय में घटित करना है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि वहां जो उत्कृष्ट की बात है वो सातवीं पृथ्वी की ही अपेक्षा लागू होती है अधिकतर, तो उसमें यही कथन होगा। विशेषार्थ में इसी को खोलते, 28 पृष्ठ पर विशेषार्थ हम ही देख रहे हैं अभी, नीचे वाला विशेषार्थ। यहाँ अंतर का प्रकरण चल रहा है अपना, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर। नरक में गुणित कर्मांश जीव के भव के अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व आदि 19 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यह वहाँ एक पर्याय में दो बार संभव नहीं है, क्योंकि अभी नरक से निकलने वाला है तो दोबारा उत्कृष्ट होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध किया। उत्कृष्ट होने का निषेध नहीं है, अंतर कब घटित होगा? दो बार उत्कृष्ट होगा तो, एक बार उत्कृष्ट होकर अनुत्कृष्ट हुआ अंतर्मूर्त के लिए, दोबारा उत्कृष्ट नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं, 19 प्रकृतियां कौन सी है? इसमें तो अनंतानुबंधी को भी लेना उत्कृष्ट। हाँ, क्योंकि तीन वेदों को अलग निकालना है। उन्नीस में मिथ्या तो 12 कषाय और 6 नौ कषाय। हाँ, ऊपर लिखा है जो हमने ओरिजिनल देखा था। अब जो नहीं बताया उसकी अभी बात करेंगे। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल के निषेध का यही कारण है। उसका भी कब होगा, सम्यक मिथ्यात्व का भी उत्कृष्ट अभी हमने देखा था ना, आयु के अंत में जाके उसने औक्षमिक सम्यक प्राप्त किया है, गुणित कर्मांशिक से आया है, गुणित कर्मांशिक तक पहुंचने के पहले पहले उसने
गुणित कर्मांशिक होने को जा रहा है।
हाँ। तथा सम्यक और तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भव के प्रथम समय में होती है। अब ये नारकी इन जनरल किया, भव के प्रथम समय में तो ये कृतकृत्य वेद वाला अंतर्मूर्त लेकर आया होना चाहिए। जरा वो छठी पुस्तक देना, लास्ट में था ना 90-92 पेज पर, नरक गति में। ये जघन्य है। हाँ, उत्कृष्ट देखना है। मैं 89 पर जघन्य है, मेरे पेजेस आगे पीछे, उसके पहले उत्कृष्ट होगा। जघन्य का प्रकरण है। यहाँ नहीं है ना, ये जघन्य की बात वहां पर है। उत्कृष्ट पहले हो चुका है, इंडेक्स में मिलेगा। उत्कृष्ट स्वामित्व ₹114। लोग का अलग अलग बताया है, नहीं उच्चारण चाह रहे में सब इकट्ठा है ना। 115 पृष्ठ पर आदेश से 116 पर आ, देखा अभी मैं पढ़ती हूँ नीचे से चौथी लाइन। हमें सम्यक्त्व की देखनी है ना, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, 116 पृष्ठ पर छठी पुस्तक में। जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवीं पृथ्वी से निकलकर तिर्यंच के संख्यात भवों में भ्रमण करके मनुष्य हुआ, सबसे लघु काल के द्वारा दर्शन मोह के क्षपण का आरंभ करके कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होकर सम्यक प्रकृति की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने पर नरकायु के बंध के वश से नरक में उत्पन्न हुआ, तो उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यही बात हमने देखी ना, कृतकृत्य वेदक वाला अंतर्मूर्त उसके निषेक बाकी है, उसके पहले की कंडीशन क्या है, वो गुणित कर्मांशिक रूप से निकला है। अब यथा युगे तीर्यंशम गति में दो चार भव करके मनुष्य में हुआ है, छोटी आयु वाला है, जल्दी से जल्दी उसने दर्शनों की क्षपणा यानी सम्यक को भी प्राप्त किया और क्षपणा भी की अंतर्मूर्त में, और पहले नरका भी बांधी थी, तो कृतकृत्य अवस्था में मरकर नरक में आ गया। तो पहले समय में ये पहले नरक में घटित होगा। 116 और 7 पर आगे एक लाइन उसकी। अब तीनों वेद की भी बात देख लेते हैं, पहले नरक में होगा ये बात। यहाँ सामान्य से बात चले ना नारकियों में, तो जो बात सातवें में घटित होती है उसको सातवें की अपेक्षा कहेंगे, जो पहले में घटित होती है उसको बताएंगे। तो नारकी इन जनरल बात चल रही है, हर एक नरक की अलग बात करेंगे तो वहाँ अलग कथन होगा।
या तो आठवें साल में वेदक समित को प्राप्त करेगा और उसके पश्चात को, क्योंकि तीरियंत के तो हमने संख्यात भव लिए, मिनिमम भव लेना है। हाँ। वहाँ पे सत्ता वाला था
तो समित को ही प्राप्त कराना है, गुणित कर्मांशिक वाला है, गुणित कर्मांशिक रीति से आया है ना वो।
अच्छा, औपशमिक प्राप्त,
औपशमिक प्राप्त करेगा नहीं, मगर औपशमिक प्राप्त करेगा तो उसका उत्कृष्ट द्रव्य होगा नहीं होगा।
जो गुणित कर्मांशिक वाला जो सम्यक्त का जो नरक में जो उत्कृष्ट करके निकला है और पीछे मिथ्या प्रमे का है, और संख्यात भाव पीरियड के किए मनुष्य में आया और मनुष्य से निकल कर वो
नरक में गया,
मनुष्य में औपशमिक अरे वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया और कृतकृत्य वेदक हुआ और नरक में उत्पन्न हुआ, ऐसा लेना पड़ेगा।
नहीं, वेदक क्यों करना चाहते हो?
क्योंकि सम्यक्त की उत्कृष्ट कभी होती है, जो गुणित कर्मांशिक होने को जा रहा है उसके अंतर्भूत
वाले की होती है,
वो तो सातवें नरक में होगा। उसके पश्चात कोई संख्यात भव ना तीरंत के किए एकदम छोटी आयु वाले।
देखो ये सातवें नरक में जो है ना, यानी उपशम समय तो के अंतिम समय में करते हैं, वहां पर अंतर्मूर्त के बाद, अंतर्मूर्त के बाद जो गुणित कर्मांशिक होने वाला है
उसके पहले
एक अंतर्मूर्त पहले वहां हमने घटित
समय को प्राप्त किया,
अब वहां उसको नहीं लेना है, पूरा गुणित कर्मांशिक कर दो ना उसको।
अच्छा, और मनुष्य में आकर ऑप्शन,
और फिर मनुष्य में आकर औपशमिक समय तो नहीं, तो उतने काल तक उसके और भी खिरेगे कि नहीं?
वो तो ऐसे खिरेगे, नहीं तो मिथ्यात्व के इतने खिर जाएंगे।
मिथ्यात्व के कैसे इतने खिरेंगे? मिथ्यात्व का बंध भी है, नया बंध भी है वहाँ पर। उपशम समय तो प्राप्त करके ही उसने क्षपणा की, तो भले ना उसमें, क्योंकि उपशम समय के काल में गुण संक्रमण हुआ तो वह हमारा प्रयोजन तो यही है, हमें तो सम्यक्त्व में ही ज्यादा द्रव्य चाहिए, तो पहले उसमें आवे या बाद में आवे उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो पूरा गुणित कर्मांशिक करना ही इष्ट है, क्योंकि तभी तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होगा। अब तीनों वेदों का भी उत्कृष्ट पढ़ लेते हम, स्वामित्व पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी वही यहाँ बताने वाले हैं। तीनों वेदों की 117 पृष्ठ पर, तीनों वेदों की किसके उत्कृष्ट होती है वो अभी हम देखेंगे। पुस्तक छठी था। जो गुणित कर्मांशिक वाला जीव वेदों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके नारकियों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के पहले समय में हमने पहले देखा था कि कैसे कैसे बारंबार वो जो गुणित कर्मांशिक वगैरह तो विधि ली है, तो कालांतर से नपुंसक वेद का कौन ज्यादा करता है? ईशान स्वर्ग में। पुरुष वेद का पल्ले की आयु वाला सौधर्म, और स्त्री वेद के लिए भोगभूमि वाला जीव पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण आयु वाला। तो अपना अपना वेद उत्कृष्ट करके कालांतर में वो नरक में उत्पन्न हुआ, तो पहले समय में उसका उत्कृष्ट होगा। अब यहाँ पढ़ेंगे, ये 28 पेज पर हम देख रहे थे, नीचे से पांचवी लाइन। सम्यक्त्व और तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भव के प्रथम समय में होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध किया है। वो उत्कृष्ट करके नरक में आया है तभी पहले समय में हो सकता है, बाद में उसको उसका निषेध किया। अब रहा अनुत्कृष्ट का विचार। अब सभी प्रकृतियों में अनुत्कृष्ट घटित करें।
एक समय
सो मिथ्यात्व आदि 19 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति यतः मध्य में होती है। अतः यतः ने क्योंकि, जिस कारण मध्य में होती है उस कारण उसका अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय घटित होगा। अतः इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा है। अंतिम समय में मानने वालों के यह अंतर घटित नहीं होगा।
ये सात्विक पृथ्वी में घटित होगा,
सात्विक पृथ्वी में ही होगा,
बाकी में तो पहले समय में होगा, तो वहाँ पे नहीं घटित होगा।
सम्यक्त्व की सम्यक्त्व द्विक उद्वेलना प्रकृतियां हैं, यानी सम्यक और सम्यक नित्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियां हैं। यहाँ इनका सत्व कम से कम एक समय और अधिक से अधिक कुछ कम 33 सागर तक न हो यह संभव है। सम्यक सम्यक नित्यात्व में वहां आते ही उद्वेलना पूरी हुई और जाके लास्ट में उसने औपशमिक सम्यक प्राप्त किया। अनंतानुबंधी में यहाँ आया है सादी मिथ्या दृष्टि, सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, सासाधन की बात नहीं, विसंयोजना की
एक समय
और 33 सागर में अंतर्मुहूर्त कम इतने काल तक विसंयोजना वाला रहा, सत्व नहीं रहा, अंत में जाकर संयुक्त हुआ मिथ्यात्व में जाकर।
ये अनंतानुबंधी का एक समय कैसे करते?
यहाँ इनका सत्व कम से कम एक समय और अधिक से अधिक कुछ कम 33 सागर तक न हो यह संभव है। विसंयोजना प्रकृति है,
क्योंकि यहाँ सासाधन में उत्पत्ति नहीं होती है,
सासाधन में उत्पत्ति नहीं होती है,
तो एक समय के लिए कैसे घटित होगा? अनंतानुबंधी की चतुष्कृति है,
यहाँ इनका सत्व कम से कम एक समय। नरक में सत्व की बात है,
एक समय के लिए
सत्व सातवें नरक में मत लो, ऊपर के नरकों में वहाँ सासाधन लेना।
तो एक समय के पश्चात वो,
मैं उत्कृष्ट अंतर की बात कर रही थी, अब जघन्य अंतर की।
जघन्य अंतर
एक समय घटित करने के लिए ऊपर के नरकों में, ऊपर के 6 नरकों में, कि उसने अनंतानु आयु के अंत में प्रथम ऑप्शन समय का प्राप्त किया,
सासाधन में गया,
विसंयोजना की पहले, और सासाधन में जाते एक समय में मर गए।
हाँ, वो अपेक्षा से मैंने बताया,
मुझे लगा आप उत्कृष्ट की
नहीं,
बात कर
रहे हैं।
और अधिक से अधिक कुछ कम 33 सागर तक न हो यह संभव है। अधिक से अधिक में क्या करना, सातवें में गया है, सादी मिथ्या दृष्टि है, वेदक समय तो प्राप्त किया, विसंयोजना की, लंबे काल तक सत्ता ही नहीं रही, अंत में मिथ्यात्व में जाते ही संयोजना हो गए, तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर घटित हुआ। जय बहन, ख्याल में आती बात क्या? बहुत फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। देखो हम क्या कहते हैं, यह हम पहले नरकों में इन जनरल बात चल रही है, जिस नरक में लागू होगी वहां बताएंगे। सम्यक्त्व प्रकृति का अभी, इनका अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर देखना है। तो अनुत्कृष्ट कब होता है, अंतर पड़ता है, तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में
सत्ता
सादी मिथ्या दृष्टि उद्वेलना करते करते यहाँ आया है। यहाँ आने पर एक समय के लिए उसकी सत्ता थी, अनुत्कृष्ट ही थी, फिर उद्वेलना पूरी हुई तो अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हो गया। अब जिस नरक में जहाँ कुछ है अंत में जाकर उसने प्रथम ऑप्शन समय पर प्राप्त किया, तो फिर दोबारा सत्ता हो गई, वो अनुत्कृष्ट ही हुई। तब हम उसको क्या कहेंगे, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। और अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर कैसे घटित करेंगे, पहले हमने देखा था उद्वेलना पूरी की, एक समय के लिए सत्ता नहीं थी,
दूसरे समय में
औक्षमिक समय तो प्राप्त किया तो सत्ता हुई थी।
हाँ,
अक्षोक्षम अगर लेना चाहते हैं तो पहले भी सत्ता थी और बाद में भी थी, सत्ता का अभाव नहीं हुआ, अंतर नहीं हुआ, हमें अंतर घटित करना है।
अनुत्कृष्ट का अंतर तो एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ और पीछे अनुत्कृष्ट हो गया है, तो एक समय अंतर ऐसे भी घटित हो जाएगा।
कहाँ पर?
अनंतानुबंधी चतुष्क में।
अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट कब होता है नरकों में? हाँ, एक अंतर्मूर्त पहले अगर लेते हैं,
हाँ,
तो अनुत्कृष्ट का एक समय वहाँ अंतर घटित होगा। अरे वहाँ पर ही लेना है उसका,
वहाँ पे ही लेना पड़ेगा।
हमने काल घटित किया, हमने अंतर कहाँ घटित किया? दोनों ने मिलकर जो साधन में भेजा उसको वो अनुत्कृष्ट का काल हुआ था, अंतर नहीं हुआ था। देखो हम 29 पेज पर आए हैं, यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कहा। मात्र सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति मध्य में होती है, इसलिए भी इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो जाता है। ये कैसे मध्य में होती है?
गुणित कर्मांशिक होने को जा रहा है और
गुणित कर्मांशिक होने जा रहा है। अभी उसने औक्षमिक समय तो प्राप्त किया, तो पहले समय में उत्कृष्ट नहीं थी, अनुत्कृष्ट थी। हर समय में असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना उसका गुण संक्रमण होता रहा, बढ़ता गया उपशम विद्यात में भी वो बढ़ता गया। उपशम समय तो के अंत में उसका उत्कृष्ट हुआ,
समय तो का उदय था,
तो उपशम समय तो के अंत में, बाद में वो वेदक समय दृष्टि हुआ या मिथ्या दृष्टि कुछ भी हुआ, सत्ता तो रही पर उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। अभी तो बीच में ही उत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय घटित हुआ। सम्यक प्रकृति में भी नीचे के नरकों में ऐसा लेना, परंतु जनरल नारकियों में सब नारकियों में घटित करना है तो गुणित कर्मांशिक वाला वो
आयु के पहले समय
मनुष्य में जाके एक सपना करते करते आया उसको लेना है। सम्यक की अपेक्षा मान लेना है। प्रत्येक नरक की अलग बात करेंगे तो वहाँ वो सम्यक मिथ्यात्व के समान सम्यक्त्व को भी हम गुणित कर्मांश वाला गुणित कर्मांश होने के बदले औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा, तो वहाँ उसकी भी उत्कृष्ट होगी उपशम सम्यक्त्व के अंतिम समय।
स्वायु के शुरुआत में हो जाएगा, पहले नरक दूसरे से छठे नरक तक गुणित कर्मांशिक वाला जो जीव।
आप ऊपर की मैं सातवें नरक की बात कर रहे, आप ऊपर की बता रहे हैं।
अंतर्मूर्त में उसने सम्यक
वहाँ गुणित कर्मांशिक से आया है।
हाँ, अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त,
पहले नरक को नहीं लेना,
पहले नरक में नहीं,
दूसरे से छठे नरक।
हाँ,
क्योंकि पहले नरक में कृतकृत्य वेदक
अंतर्मूर्त के पहले
अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति लेकर आया है उसको लेना उत्कृष्ट वाले के। कन्फ्यूजन एक एक प्रकृति को अलग लेना। देखो हम यहाँ से फिर पढ़ते 28 पेज पर हम नीचे से फिर पढ़ेंगे, क्या पूरा विशेषार्थ लेना है? फिर विशेषार्थ शुरू से नरक में 28 पेज पर नरक
ये खाली सम्यक तो सम्यक विद्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क। तीन की बात है।
देखो नीचे से पांच, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सम्यक्त्व और तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति बहु के प्रथम समय में होती है। ये कौन से, अभी ये पहले नरक में लेना सम्यक्त्व के लिए, और तीनों वेदों के लिए अपने अपने जहाँ उत्पन्न होगा उसको लेना है। तीनों वेदों का उत्कृष्ट करके, पहले गुणित कर्मांशिक था, उत्कृष्ट करके नरक में उत्पन्न हुआ यथा योग्य काल में, ऐसा जीव लेना। इसलिए उत्कृष्ट पहले समय में है, उसका अंतर नहीं हो सकता। सम्यक्त्व के बारे में क्या लेना है, कृतकृत्य वेदक वाला, वही गुणित कर्मांशिक है, दो चार तिर्यंश के भाव किया, मनुष्य में गया, जल्दी से जल्दी क्षपणा करते करते पहले नरकायु बांधी, वो सब कंडीशंस पूरे करना, और कृतकृत्य वेदक का अंतर्मूर्त बाकी है, तब नरक में आया तो उसकी सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट होगी। उसका अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता,
नहीं होगा।
जिसके उत्कृष्ट पहले समय में है उसका अंतर नहीं हो सकता, उत्कृष्ट का अंतर नहीं हो सकता।
ये गुणित कर्मांशिक वाला जीव जो हम लोग लेते हैं, वो जो तिर्यंश का जो संख्यात भाव करके मनुष्य में उत्पन्न होगा, वो सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकता है और चपड़ा भी चालू कर सकता है।
हाँ, कर सकता है। इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध किया 28 पेज पर नीचे से चौथी लाइन लास्ट में। अब रहा अनुत्कृष्ट का विचार, सबके अनुत्कृष्ट अभी देख रहे हैं, अभी तक हमने उत्कृष्ट का अंतर देखा। मिथ्यात्व आदि 19 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति मध्य में होती है, अतः इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा। एक अंतर्मूर्त पहले होती है सातवें नरक में, गुणित कर्मांशिक वाले, तो उसके पहले भी अनुत्कृष्ट और एक समय के बाद भी अनुत्कृष्ट। सम्यक्त्व द्विक उद्वेलना प्रकृतियां हैं, और अनंतानुबंधी चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियां हैं। यहाँ इनका सत्व कम से कम एक समय और अधिक से अधिक कुछ कम 33 सागर तक न हो, यह संभव है। ये सत्व अनंतानुबंधी को जो यहाँ लिया है
वो कुछ
उसका सत्व एक समय न हो, ये कैसे बन सकेगा, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि विसंयोजना के बाद एक समय के अंतर से सत्व नहीं हो सकता।
अंतर्मूर्त के पश्चात ही वो,
अंतर्मूर्त के पश्चात ही उसकी संयोजना हो सकती है। यानी ये जो यहाँ उनको, यहाँ इनका सत्व ये जो बताया है वो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के लिए लेना। अनंतानुबंधी का एक समय के लिए सत्व न हो, ऐसा नहीं बनेगा।
जो विषयोद्धा जो प्रथमोपशम में करता
अभी
है,
अभी अभी इनको जरा आपको प्रश्न है, जरा बाद में पूछना। हाँ, क्या कहा, ये सम्यक्त्व और सम्यक ध्यान में रखना वो प्रश्न। इनका जो यहाँ लिखा ना, एक समय के लिए सत्व न हो ये बन सकता है, तो यहाँ सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व पेंसिल से लिखेंगे हम। सम्यक्त्व इनका है ना, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व कम से कम एक समय और अधिक से अधिक कुछ कम 33 सागर तक न हो, यह संभव है। ये कैसे है, कम से कम एक समय तक संभव न हो, जैसे उद्वेलना करते करते आया है
प्रथम ऑप्शन
और उद्वेलना कर चुका, एक समय के लिए सत्व नहीं था और प्रथमोक्षम सम्यक का प्राप्त किया कहीं बीच में, जब कभी पॉसिबल है तभी, तो एक समय के लिए सत्व नहीं था, और अधिक से अधिक कुछ कम 33 सागर कैसे घटित करना है,
वेदक समय
तो यहाँ आया है
प्रथमोक्षम,
प्रथमोक्षम सम्यक का प्राप्त, सॉरी वेदक सम्यक के साथ सादी मिथ्या दृष्टि आया है।
मिथ्या दृष्टि लेना है पर 28 प्रकृति वाला लेना है और उद्वेलना कर रहा है एक समय में,
हम अधिक से अधिक 33 सागर तक न हो।
हाँ,
तो यहाँ आने पर उसकी उद्वेलना पूरी हुई
एक समय में,
सम्यक तो समय मिथ्यात्व के बारे में। हाँ, और लास्ट में जाकर फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया। अब अनंतानुबंधी में इतना उत्कृष्ट अंतर हम घटित कर सकते हैं, कैसे, शुरू में आया है उसने विसंयोजना की,
अंत में जाके मिथ्यात्व
अंतर प्राप्त हुआ, फिर अंत में जाके संयोजना की, परंतु कम से कम एक समय के लिए जो अंतर बताया है अनंतानुबंधी में वो उत्कृष्ट के बीच में उत्कृष्ट करता है ना मिथ्यात्व, वैसे ये भी करता है। पर सत्ता न हो उस अपेक्षा से अंतर नहीं घटित होता। एक समय के लिए सत्ता न हो ऐसे अनंतानुबंधी में नहीं बन सकता।
या एक से छह नरक में आयु के अंत में वो प्रथम उत्सव सम्यक तो प्राप्त करता है, विश्व योजना करता है, शासन में गया तो एक समय घटित होगा
विसंयोजना के बाद।
विसंयोजना करके एक समय में वो शासन में चला गया
तो विसंयोजना के बाद एक समय में शासन में जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये प्रश्न है। क्योंकि विसंयोजना के बाद संयोजना होने पर भी अंतर्मूर्त पहले फिर मरता है, ऐसा कुछ है उसमें? मिथ्यात्व में आने पर तो अनंत अंतर्मूर्त में के पहले मरण नहीं होता है, मिथ्यात्व में जाने पर। यहाँ क्या प्रश्न है, औपशमिक सम्यक्त के काल में विसंयोजना की उसने, मान लेते हैं तो क्या एक समय में शासन में आ सकता है क्या?
मरण की अपेक्षा ही नहीं है, एक
मरण की बात नहीं, यानी इतना लेट विसंयोजना करके वो फिर एक समय में शासन में आता है या नहीं आता, ये बात है। संयोजना हो सकती है विसंयोजना के बाद अंतर्मूर्त के पहले? अभी तक नहीं आया था अंतर में कहीं। यहाँ जो अंतर होगा तो उत्कृष्ट की अपेक्षा घटित हो सकता है ऐसे मुझे लगता है। जैसे मिथ्या तो आगे आए बस, हाँ अभी हम आगे पढ़ेंगे। जय बेन, यहाँ तक तो बात ख्याल में आई? अतः इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कहा है। मात्र सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति मध्य में होती है। मध्य में कब? हमने देखा था ना गुणित कर्मावशिक है, गुणित कर्मावशिक होने के पहले
अंतर्मुख पहले वो।
पहले उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया औपशमिक सम्यक्त्व, तो गुण संक्रमण से इसमें अधिक माल आ गया, इसलिए भी इसके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी यानी दूसरा कारण बताया, एक तो उद्वेलना की अपेक्षा और उत्कृष्ट होने की अपेक्षा, और अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना एक समय के लिए नहीं होती। क्या लिखा है? इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा से ही प्राप्त कराना चाहिए। आगे पढ़ते तो इतने प्रश्न नहीं उठते है ना, तभी इसीलिए हमने वहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व लिख लिया ना, इनका यानी क्या है, क्योंकि विसंयोजना के बाद एक समय के लिए सत्ता नहीं और दूसरे समय में हो जाए ऐसा नहीं बन सकता, अंतर्मूर्त तो जाएगा ही उसमें। तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भव के प्रथम समय में होती है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का भी निषेध किया, अंतर का निषेध है, क्योंकि पहले ही समय में उत्कृष्ट हो जाए बाद में अनुत्कृष्ट रहेगा, नारकी से अन्य भव में चला जाएगा। यह सब अंतर प्ररूपणा सातवें नरक में अविकल बन जाती है, इसलिए वहां सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। आप कहेंगे वो तो वेदों के पहले समय में, हाँ वहाँ पे हो सकते हैं ना, फिर दोबारा सातवें नरक में आ गया है बीच में एकाध भव करके दो भव करके। प्रथम से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है।
ये पहले समय की अपेक्षा,
वो पहले समय में होता है ना, इसलिए अंतर नहीं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। पहले से छठी तक लिया है इसलिए,
क्योंकि वहां भी उत्कृष्ट पहले समय में जो उत्पन्न हुआ है उसके होगा,
वो तो पहले नरक में होगा। यहाँ जो गुणित कर्मांशिक रूप से आया है और उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त में उसने सम्यक तो प्राप्त किया।
अच्छा, वो लेना,
उसको लेंगे। गुणित कर्मावशिक से आया है, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है उसके सत्व, और उसने प्रथम उपशम समय को प्राप्त किया, तो अंतर्मुहूर्त का जो अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होगा। तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। पहली पृथ्वी में तो उत्कृष्ट हमने देखा वो कृतकृत्य वाला, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, ये उद्वेलना की अपेक्षा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, यानी वहां आते ही उद्वेलना पूरी की और भोग के अंत में समय को प्राप्त किया। अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। वहां मिथ्यात्व बारह कषाय में भी अंतरकाल नहीं कहा ना, तो इसका भी उत्कृष्ट भोग के पहले समय में होगा, इसलिए उसका अंतरकाल नहीं बताया। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अंतर किया ना, अनुत्कृष्ट का अंतर किया ने विसंयोजना कर दी और अंतर्मूर्त के बाद संयोजना की, तो अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त हुआ। और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा?
अब कुछ कम अपनी विसंयोजना कर दी।
देखो हम पहले नरक में देखते हैं, वहां आते ही उसने विसंयोजना कर दी और पूरे समय कृष्टि रहा
अंत में,
और अंत में मिथ्यात्व में गया कि सासाधन में भेजेंगे?
नहीं नहीं, सासाधन में कैसे जाएगा?
सासाधन में जाने वाला प्रथम ऑप्शन समय दृष्टि होता है। इसको इतना लंबे काल तक समय दृष्टि रखा है ना, तो वेदक समय दृष्टि रहा, अंत में मिथ्यात्व में गया, तो फिर संयोजना हो गई, अनुत्कृष्ट का अंतर हुआ। इसलिए कुछ कम अपनी अपनी स्थिति, क्योंकि पहले से छठे नरक तक घटित कर रहे एक साथ, तो जिस नरक की बात चल रही हो उसकी उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आयु लेना। देखो अनंतानु उस वहां वो उत्पन्न हुआ, एक अंतर्मूर्त ने उसने विसंयोजना कर दी, अब वो उसकी अनुत्कृष्ट कुछ सत्ता ही नहीं रही, फिर दोबारा सत्ता कब होगी? जब संयोजना करेगा तब। वो कब की उसने? आयु के अंत में मिथ्यात्व में जाकर। वो भी मरण के अंतर्मूर्त पहले जाएगा। हाँ, विसंयोजना करके संयोजना होने पर अंतर्मूर्त में वो मरता भी नहीं है उसके पहले। विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसी का विशेषार्थ। यहाँ इन्हें कहा
पहले से छठे नरक,
हाँ पहले से छठे नरक तक मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भव के प्रथम समय में होती है। किसको छोड़ा?
सम्यक्त्व मिथ्यात्व
को छोड़ा। इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल न प्राप्त होने से उसका निषेध किया है। पहले समय में उत्कृष्ट है, दोबारा उत्कृष्ट भी नहीं हो सकता। अनुत्कृष्ट तो दूसरे समय से भव के अंत तक हुआ, तो अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं हुआ। उत्कृष्ट भी है अनुत्कृष्ट भी है, परंतु उनका अंतर नहीं। ये बात ख्याल में आती है? देखो पहले अनुत्कृष्ट हो, बीच में अगर उत्कृष्ट हो जाए, फिर अनुत्कृष्ट हो, तो अनुत्कृष्ट का अंतर होगा। पहले उत्कृष्ट हुआ, फिर अनुत्कृष्ट हुआ, फिर उत्कृष्ट हुआ, तो उत्कृष्ट का अंतर हुआ। परंतु यहाँ पहले ही समय में उत्कृष्ट है, दोबारा उत्कृष्ट होगा नहीं, तो उत्कृष्ट का अंतर नहीं। एक बार अनुत्कृष्ट होने पर बीच में उत्कृष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं। सातवें नरक में कैसे? अंतर्मूर्त पहले उत्कृष्ट बनाया था मरण के पहले, इसके लिए अनुत्कृष्ट का अंतर था, वहां भी उत्कृष्ट का तो अंतर नहीं था। उसका निषेध किया। विशेषार्थ की तीसरी लाइन, मात्र संयोजना की विसंयोजना की अपेक्षा अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में फिर संयोजना करके फिर विसंयोजना करता है या विसंयोजना करके फिर संयोजना करता है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण बन जाता है। ये अभी हमने घटित करके देखा ना, उत्कृष्ट अंतर ने शुरू में विसंयोजना की और अंत में जाके मिथ्यात्व में गया। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल का अलग से विधान किया। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म एक बार ही प्राप्त होता है, इसलिए इसके अंतरकाल का निषेध किया। पहली पृथ्वी में जो उत्कृष्ट सत्व लेके आया है सम्यक्त्व के लिए तो कृतकृत्य वेदक, और सम्यक मिथ्यात्व भी शुरू में जब उसने औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है तब उसको हुआ। तथा यह आयु में अंतर्मूर्त जाने पर प्राप्त होता है, और ये उद्वेलना प्रकृतियां हैं, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय कहा, और उद्वेलना प्रकृतियां होने से वहां इनका कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण काल तक सत्व न रहे यह संभव है। इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण कहा है। पृष्ठ 29 चल रहा है अपना, नीचे से तीसरी लाइन देखो, 16 कषाय देखो। आपका ऐसा प्रश्न है, पहले 16 कषाय की एक साथ बात की, मात्र विसंयोजना करके फिर अनंतानुबंधी को अलग लिखा, क्योंकि इनकी कब होती है मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति पहले समय में होती है, अनंतानुबंधी की भी उत्कृष्ट पहले समय में होगी, अनुत्कृष्ट में अंतर पड़ेगा, इसलिए उसको अलग से बताया। देखो यहाँ विषय क्या चल रहा है हम देखते हैं। हम 29 पृष्ठ पर आए हैं, ये जो यहाँ पुस्तक सातवीं जयधवला की चल रही है उसमें विषय चलेगा ना, वही मैं कौन से विषय चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी धवला की सातवीं पुस्तक चल रही है, इसका नाम है प्रदेश विभक्ति। प्रदेश का अर्थ होता है कर्म परमाणु की संख्या, जीव की सत्ता में कितने कर्म परमाणु है उसको कहेंगे प्रदेश। जब कर्म बनता है तभी हम कहते ना प्रदेश बंद हुआ, प्रकृति बंद हुआ, स्थिति बंद हुआ, अनुभाग बंद हुआ। तो बंधने के बाद वो सत्ता में पड़े रहते हैं, और सत्ता में पड़े पड़े उसमें हर समय बंद भी हो रहा है, कोई खिरते भी है, तो कहां पर ये जो प्रदेशों की यानी परमाणुओं की संख्या हीनाधिक होती है उसका यहाँ वर्णन है। किसी भी कर्म की अधिक से अधिक परमाणु कब होते हैं और कम से कम कब होते हैं, ये इसकी चर्चा चल रही है। तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अर्थ होता है उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कब होती है, और जघन्य प्रदेश विभक्ति यानी जघन्य में जघन्य वो प्रदेश कब होते हैं। जैसे यहाँ मिथ्यात्व की बात उठाई थी उन्होंने, तो मिथ्यात्व की प्रदेश विभक्ति यानी परमाणु की संख्या मैक्सिमम कब होती है, तो इसके लिए दो शब्द आते हैं शास्त्र में, एक है गुणित कर्मांशिक जीव और एक है क्षपित कर्मांशिक जीव। गुणित कर्मांशिक के लिए गुणित यानी गुणित प्रमाण में, यानी उसके कर्म संचय होता गया अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कर्म कैसे आते हैं जीव की सत्ता में, तो जो बंद होते समय अधिक बंद काहे से होता है, तो जहां योग ज्यादा है, योग का वेरिएशन होता रहता है, हर एक जीव में होता रहता है, पंचेंद्रियों में भी जघन्य एक योग से उत्कृष्ट योग तक योग हमेशा ही पलटता रहता है, कॉन्स्टेंट कोई एक योग नहीं रहता है, हो सकता है दो चार समय आठ समय तक अधिक से अधिक कॉन्स्टेंट रह सकता है। तो यहाँ ऐसे जीव लिए कि बहुत बार उसने उत्कृष्ट योग के साथ कर्म का ग्रहण किया था, उसमें बहुत सारी कंडीशंस है। योग उत्कृष्ट होने चाहिए, ज्यादा संकलेश वाला जीव चाहिए, बहुत बार त्रस पर्याय में, पर्याप्तों में बहुत बार आया है, आदि आदि बहुत कंडीशंस है। वो सारा फुलफिल करके सातवें नरक में आता है, पूरे अधिक से अधिक उत्कृष्ट संकलेश परिणामों में रहता है, तो वहाँ आयु के अंत में जाकर उसका उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, उसके कर्मों की जो सत्ता है, संख्या है, वो मैक्सिमम पॉसिबल होती है। ऐसे जीव को कहते हैं गुणित कर्मांशिक जीव। जघन्य के लिए हमने देखा था क्षपित कर्मांशिक जीव, क्षपित यानी उसने बहुत सारा कर्म
खिपा,
अभी वो मोक्ष मार्ग में खिपाता है, वो बात नहीं है। यहाँ तो एकेंद्रियों में जाता है, वहां भी बहुत सारे उसके पंचेंद्रियों में बंधे हुए सारे स्थिति कांडक वगैरह प्रोसेस होकर बहुत सारे उसके कर्म निकल जाते, खिर जाते ज्यादा प्रमाण में। वहां तो उसको बहुत बार सम्यक को प्राप्त कराया था, एकेंद्रियों में तो लंबा काल रहा ही रहा, वहां से निकलकर त्रस में आता है तो असंख्यात बार तो सम्यक को प्राप्त किया, संयमा संयम धारण किया, तो चार बार श्रेणी चढ़ के उतरा है, फिर भी बारंबार मिथ्या तो में जा रहा है। और फिर उसने वो एकेंद्रिय के पर्याय धारण करके फिर आया है, वो उसको कहेंगे हम क्षपित कर्मांशिक जीव। ऐसे दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ तो हम यही पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि मिनिमम किस जीव में होता है, मैक्सिमम किस जीव में होता है, और वो हर एक प्रकृति पर घटित कर रहे हैं, मिथ्यात्व में, अनंतानुबंधी में, अन्य कषायों में, मोहनीय के सभी, ये सब बातें मोहनीय पर ही चल रही है। जयधवला का पूरा विस्तार जो है 16 पुस्तकों में मोहनीय कर्मों की ही बात, उसके अलावा अन्य कुछ बात नहीं है, फिर भी 16 पुस्तकें उस पर लिखी है। दर्शन मोहनीय भी है और चारित्र मोहनीय भी है, दोनों मोहनीय की बात चल रही है। तो उसमें भी बहुत सारे नियम, बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग बातें बीच बीच में आती रहती है, और ये भी बात पता चलता है कि जीव के परिणाम कैसे कैसे होते हैं। अभी हमने देखा ना, इतनी बार उसने कषाय को उपशमाया, विचार बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, इतनी बार समय तो प्राप्त किया है, फिर भी ऐसे कोई परिणाम बिगड़ जाते कि एक इंद्रियों में निगोद में भी चला जाता, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि वहां से निकला और फिर 8वें साल में केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें तो हमें जीवों के परिणामों की विचित्रता भी ख्याल में आती है, और हम भी अपने परिणामों में संतुष्ट होकर रह जाते हैं, तो ये पता चलता है कि इससे संतुष्ट होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं और केवली ने बताई हुई बातें। तो इसमें से प्रत्येक जीव का पर्यायों का क्रम कैसा सुनिश्चित है और अलग अलग है, वो भी ख्याल में आता है। यानी किसी के दूसरे से करने से तो नहीं होती है। तो अभी यहाँ जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम देखा है, पहले उसका स्वामित्व बताया कि किस जीव को ये मैक्सिमम होता है और किस जीव को मिनिमम होता है। उसके बाद इसका काल बताया है। तो मैक्सिमम होता है यानी उत्कृष्ट, जिसको कहेंगे कितने काल तक लगातार उत्कृष्ट रह सकते संख्या, तो कहते हैं एक समय के ज्यादा नहीं हो सकते, जहां कहीं भी होती वो एक समय के लिए होती है। तो वो भी अलग अलग जीवों के अलग अलग पोजिशन पर होती है। तो प्रत्येक प्रकृति में उन्होंने वो बात बताई। तो काल के बाद अभी हम अंतर देख रहे हैं। अंतर का अर्थ क्या होता है कि लौट कर फिर वापस उसी पोजीशन पर आना, उसको कहेंगे अंतर। हम गुण स्थानों की बात करेंगे, फिर इसमें घटित करेंगे। जैसे हम किसी को पूछेंगे मिथ्यात्व में जीव था, तो मिथ्यात्व का अंतर कब शुरू हो जाएगा, जब जीव मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तो उसका अंतर चालू हो गया मिथ्यात्व का, और वापस जब मिथ्या दृष्टि होगा तो अंतर समाप्त हुआ। तो मिथ्यात्व का अंतर तो हम कहेंगे कम से कम कितना है और अधिक से अधिक कितना है, मिथ्यात्व का अंतर हो
गुणस्थान का।
गुणस्थान का कहो, मिथ्या दृष्टि रहने का भी कहो, तो मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतर कितना है। तो मिथ्यात्व में से चाहे कोई चौथे में गया, कोई पांचवे में गए, सातवा छठवा किया, और अर्लिएस्ट मिथ्यात्व में आया, मंजू भाई इनको एक समय में आ सकता है मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि हुआ एक समय में कोई मिथ्या दृष्टि होगा क्या? हाँ, तो अर्लीस्ट कब? एक अंतर्मूर्त में आएगा, तो उसका मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर एक अंतर्मूर्त है, जघन्य अंतर, उत्कृष्ट नहीं, जघन्य अंतर। उसका अधिक से अधिक अंतर कितना होगा, यानी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, अब लंबे काल तक वो मिथ्यात्व में आया ही नहीं, बोलो
नहीं,
वो सम्यक्त्व का अंतर बात बता रहे हैं आप?
नहीं नहीं, तीन पल में दो बार शासक सागर।
अरे वो भी नहीं,
तीन सॉरी सर, दो, अरे 132 सागर सर।
आप क्या कहते हैं, ये आप जो अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन बता रहे हैं वो इतर निगोद का काल बता रहे हैं?
266।
देखो मिथ्यात्व का अंतर का क्या है, इतने काल तक कोई रहेगा?
ज्यादा से ज्यादा सम्यक्त्व के साथ कितने काल तक?
सम्यक्त्व में रहने का अधिक से अधिक काल
132
सागर, वो मिथ्यात्व का अंतर है,
कुछ कम 132।
तो मिथ्यात्व में से सम्यक् दृष्टि हुआ, औपशमिक सम्यक् दृष्टि हुआ, वेदक हुआ, 66 सागर काल तक रह गया, फिर एक अंतर्मूर्त के लिए सम्यक तीसरे गुणस्थान में आया, मिथ्यात्व में नहीं आया, फिर दोबारा 66 सागर तक रहा, तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कितना है, दो बार 66 सागर,
132
सागर। हाँ वो तो इतना पूरा रहेगा तो क्षपणा करेगा, इसलिए एक अंतर्मूर्त पहले फिर मिथ्यात्व में आएगा। अभी हम सम्यक्त्व का अंतर देखते हैं। कोई सम्यक दृष्टि है, उसका अंतर हुआ है ना मिथ्यात्व में गया, अर्लीएस्ट पूछ रहे हैं,
अंतर्मूर्त
अर्लीएस्ट का लौटेगा एक अंतर्मूर्त, अब वो मिथ्या दृष्टि ही रहा लगातार लंबे काल तक, सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं, तो कितना होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन। उतने काल में नियम से कहीं भी किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, वहां से निकलेगा, मनुष्य होगा, वो चरम शरीर के लिए जो कोई आवश्यक कंडीशन है ना, कौन से वो सहनन वगैरह बांध के आएगा सब कुछ, और फिर वहां आके सम्यक्त्व भी प्राप्त करेगा, संयम भी धारण करेगा, क्षपक श्रेणी भी चढ़ेगा, मोक्ष चला जाएगा। तो ये उसका सम्यक्त्व का अंतर इतना लंबा, इसको कहेंगे अंतर। अब यही अंतर हम यहां घटित कर रहे हैं, किसी जीव के मिथ्यात्व के उत्कृष्ट परमाणु हो गए, कभी वो पूरा गुणित कर्मोशिक यानी मैक्सिमम उसने किए है, और सातवें नरक के अंतिम समय में आया है एक अंतर्मूर्त पहले, तब उसका उत्कृष्ट हुआ। अब दोबारा उत्कृष्ट कब हुआ, तो कहते अनंत काल, कितना अनंत, असंख्यात पुद्गल परावर्तन चले जाएंगे, क्योंकि एक बार गुणित कर्मांशिक हुआ है, अब वो उसमें से अन्य अन्य उसके घटेगा, लगातार गुणित वाला गुणित ही नहीं रहता है, फिर दोबारा सारा प्रोसेस करके गुणित होने के लिए उसको इतना अनंत काल बीच में चला जाएगा, ये उसका अंतर कहेंगे। ये तो इन जनरल अंतर हुआ। अब हम जहां जो पढ़ रहे हैं 29 पेज पर, वो विशिष्ट गति की बात चल रही है। अब यहां नरक गति में घटित करें, तो नरक गति में जो उसका उत्कृष्ट हुआ संख्या, वो भव के एक अंतर्मूर्त बाकी था तभी हुआ था, अब वहां से वो मरकर अन्य भव में चला गया, तो नारकी के रहते हुए वो दोबारा नहीं होता है, इसलिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं है केवनिया, परंतु अनुत्कृष्ट ने जो उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। जब एक समय के लिए बीच में उत्कृष्ट हुआ था तो उसको कहेंगे अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय में हुआ। ऐसे हमने हर एक प्रकृति पर यह घटित करके देखा, यहाँ डिफरेंस कहाँ होता है,
अनंतानुबंधी
तो एक तो होते हैं अनंतानुबंधी में, क्योंकि अनंतानुबंधी जो कर्म है उसकी स्पेशलिटी है, वे जो प्रकृति है उसको कहेंगे इनकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना होती है इसका अर्थ क्या है, कि जो कोई सम्यक दृष्टि है, औपशमिक हो या वेदक सम्यक दृष्टि, जब उनकी विशुद्धि बढ़ती है तो सहज रूप से अनंतानुबंधी की जितनी सत्ता में पड़े हैं सभी के सभी परमाणु एक अंतर्मूर्त काल में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और नवनोकषा इन रूप परिवर्तित होते हैं, परिणमित होते हैं, संक्रमित होते हैं, और उनकी सत्ता नष्ट हो जाती है, तो उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। परंतु ऐसा कि ऐसा जो मिथ्यात्व में गया तो फिर दोबारा अनंतानुबंधी का बंध भी होता है, उसकी संयोजना ने वो संक्रमण हुआ था ना अन्य रूप, वो वापस उल्टा भी इसमें सत्ता में आता है और उसका उदय भी चालू होता है। तो ये विसंयोजना वाली प्रकृति होने से इसमें कुछ विशेषता है। अन्य विशेषता वाली प्रकृतियां एक सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। जीव के पास अनादि से तो एक मिथ्यात्व प्रकृति ही होती है। जब पहली बार औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति दोनों प्रकृतियां तैयार होती है। कैसे होती है? औपशमिक सम्यक्त्व होते ही पहले ही समय से गुण संक्रमण शुरू होता है। गुण संक्रमण का अर्थ होता है गुणित प्रमाण में संक्रमण, यानी पहले समय में जितना संक्रमण हुआ है मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं, उसका अर्थ क्या है? मिथ्यात्व का अनुभाग जो है वो अनंतवा भाग रह जाता है, वे ही परमाणु डाइल्यूट हो जाते हैं और वो अभी उसको मिथ्यात्व कहने के बदले हम उसको कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व। और डाइल्यूट हो गया उसका अनुभाग और घट गया तो उसको कहेंगे ये सम्यक प्रकृति। उसका उदय होगा तो सम्यक्त्व में तो कोई बाधा नहीं होती है, वो मिथ्यात्व में से ही बनी हुई प्रकृति है। औपशमिक सम्यक्त्व होते ही पहले ही समय से ये प्रोसेस शुरू होता है। मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व भी होते हैं, कुछ परमाणु डायरेक्ट सम्यक प्रकृति रूप भी होते हैं। दूसरे समय में, पहले समय में जितने हुए उससे असंख्यात गुना दूसरे समय में, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, चौथे समय में उससे असंख्यात गुना, ये प्रोसेस अंतर्मूर्त तक चलता है। बाद में असंख्यात गुना वाला प्रोसेस स्लो डाउन होता है, फिर भी जब तक औपशमिक सम्यक्त्व है तब तक ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो ये जो अभी नया सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व तैयार हुआ है, तो जहां मिथ्यात्व के परमाणु ज्यादा हो गए वहां इनके भी परमाणु ज्यादा हो जाएंगे, अभी नए बने ना वो, तो इसका हिसाब कौन से नरक में कहां ज्यादा हो सकता है, कौन से नरक में कहां है, क्योंकि सातवें नरक के लिए कुछ अलग नियम है, ऊपर के छह नरकों के लिए कुछ अलग नियम है, इस तरह से हमने नरक की बात यहां पढ़ी। अब तिर्यंच गति में अप्लाई करके वो बता रहे हैं, हम पढ़ेंगे यहां नीचे 29 पेज है नीचे से तीसरी लाइन, हाँ 40 नंबर का पॉइंट है। तिर्यंच गति में, जब तिर्यंच गति कहते हैं तो तिर्यंचों में किस किस को लेना मंजू बहन? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब तिर्यंच उसमें आ जाए। तो जब हम कंसीडर करेंगे तो सबकी अपेक्षा हमको सोचना चाहिए, जब कहेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच तो उनकी अपेक्षा अलग बात सोचेंगे, परंतु यहाँ तिर्यंच इन जनरल की बात पहले उठाई है। तो तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 8-9 कषाय, इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। देखो 12 कषाय ने अनंतानुबंधी को अलग रखा क्योंकि उसके कथन में विषयोजना वाली बात आती है, इसलिए उसकी बात अलग से बताते हैं। तो 12 कषाय में कहां कौन से लेना, यहां पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। जब ओग मैंने गुणस्थानों में बातें की थी या जब मनुष्यों में बात आएगी तो संज्वलन की बात अलग करेंगे, क्योंकि संज्वलन में मैक्सिमम कब होता है, जैसे हम संज्वलन क्रोध की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम द्रव्य कब होता है, तो जब नवे गुणस्थान में ये सारा देखो कैसे कैसे हुआ है। जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो उसके पहले क्या होता है, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव कौन सा होता है, तो जिसने पहले दर्शन मुनि की क्षपणा की है, उसके साथ अनंतानुबंधी भी अन्य रूप हो गया है, यानी अनंतानुबंधी का सारा माल अन्य 12 कषायों में आ गया। फिर नवे गुणस्थान में जब क्षपणा प्रारंभ करता है, मुनि की बात, अन्य की बात अभी हम गौण करेंगे, तो पहले में पहले 8 मध्य के कषाय उसकी क्षपणा करता है। क्षपणा करता है का अर्थ होता है, क्षपणा किस प्रकार से होती है, तो सभी परमाणु संज्वलन रूप से टर्न हो जाते हैं, उसको कहेंगे क्षपणा की। तभी संज्वलन में और परमाणु आ गए। फिर जो 6-9 कषाय है वेदों को छोड़कर, उसका भी माल सारा संज्वलन क्रोध में आ गया। फिर पुरुष, ये तीनों वेद, नपुसक वेद का माल पुरुष वेद में आया, स्त्री वेद का माल पुरुष वेद में आ गया, और पुरुष वेद का सारा द्रव्य ने परमाणु संज्वलन क्रोध में आ गया। ऐसा जब होता है तब संज्वलन क्रोध के परमाणु मैक्सिमम पाए जाते हैं। ऐसी बात तिर्यंचों में नहीं होती क्योंकि तिर्यंचों में क्षपणा ही नहीं होती है, अध्यापक श्रेणी तो मनुष्य में होती है। तो इसलिए ये जो बात है जो हमने सामान्य इन जनरल सभी जीवों की अपेक्षा देखी थी तो तीरियंच गति में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो तीरियंचों में उत्कृष्ट कब होता है ऐसा अगर हम पूछेंगे तो अभी हमने जो देखा था नारकी में जिसने उत्कृष्ट किया था जिसको हमने गुणित कर्मांशिक कहा था वो जीव जब तीरंच में जन्मेगा ना नरक से छुटकर तीरंच में जन्मने वाला है तो पहले समय में उसका भी द्रव्य मैक्सिमम है उसको तीरंच के लिए उत्कृष्ट कहेंगे। तो वो पहले समय में कौन सा गुणित कर्मांशिक सातवें नरक के अंतिम समय में उसने उत्कृष्ट किया है अब वहां से मरकर तीरंच में जन्म लिया है पहले तो पहले समय में उत्कृष्ट है। क्या दोबारा उसका उत्कृष्ट पॉसिबल है तीरंच गति में रहते हुए तो नहीं क्योंकि अनंत काल जाएगा फिर दोबारा जब नरक से लौट कर आएगा तब उसका होगा। परंतु जब अभी मार्गणा में हम मार्गणा में गति की बात कर रहे हैं तीरंच गति कांस्टेंट रहनी चाहिए उसकी अभी बीच में दूसरी गति नहीं उसी को हम मार्गणा कहेंगे। तो तीरंच में पहले ही समय में उसके उत्कृष्ट था तो दोबारा उत्कृष्ट होने का सवाल नहीं है इसलिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं है। पहले समय में उत्कृष्ट होने के बाद लगातार जितने काल तक तीरंच में रहेगा अनुत्कृष्ट ही रहेगा इसलिए अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं है। दोनों ओर सिद्ध हो गई ना। तो अभी हमने जो वाक्य पढ़ा तीरंच गति में तीरंचों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 8-9 कषायों की 8-9 कषाय लिए यहाँ पर उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है तीरंच में रहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अभी ऐसा जीव लिया है जो गुणित कर्मांशिक से आया है नरक से अभी वो तो सातवें नरक से निकलकर जो तीरंच भव मिलता है उस भव में उसको सम्यक्त्व नहीं हो सकता और वो हमने त्रस पर्याय का अंतिम भव देखा था इसके बाद वो एकेंद्रीय में चला जाएगा दो चार भव करके वो फिर तीरंच हुआ तीरंच गति की तीरंच गति ही रहेगी वहां जाकर संगी पंचेंद्रिय में वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा प्रथम ऑप्शन तब उसके वो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व मैक्सिमम होगा ये उसका उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट होने के पहले अनुत्कृष्ट था बाद में भी अनुत्कृष्ट हुआ तो उत्कृष्ट एक समय के लिए बीच में हुआ ये हो सकता है वहां पर। हाँ देखो ये 12 कषाय बताए ना 12 में अनंतानुबंधी की बात अलग बता रहे और जब 8-9 कषाय लिए हैं तो देखो अभी यहाँ तो स्त्रीवेद की बात अलग कर रहे हैं ऊपर स्त्रीवेद की बात अलग स्त्रीवेद को छोड़कर उसके बाद अभी बताएंगे आगे। देखो अनंतानुबंधी चतुष्कति उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है क्योंकि ये भी किसके है नरक में से निकला हुआ तीरंच के पहले समय में अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट होगा उत्कृष्ट का अंतर नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। आप कहेंगे अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा जब कोई जीव सम्यक को प्राप्त करता है और विसंयोजना करता है तो उसके पास सत्ता में जो कुछ था उसको अनुत्कृष्ट था फिर नष्ट हो गया सत्ता में से ही नष्ट हुआ वही जीव जाकर जब फिर संयोजना करेगा यानी मिथ्यात्व में जाएगा तब उसकी सत्ता में फिर वो द्रव्य आ जाएगा। तो बीच में अनुत्कृष्ट था बीच में गैप हो गई फिर अनुत्कृष्ट हुआ तो वहां उसका अंतर्घटित होगा। तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त का अर्थ है क्या है विसंयोजना करने के बाद अंतर्मूर्त में ही फिर उसने संयोजना की का अर्थ होता है मिथ्यात्व में गया।
यहाँ पे ये सासाधन की अपेक्षा ले सकते हैं क्योंकि ये जघन्य अंतर्मूर्त हो जाएगा।
हाँ सासाधन उसको ले सकते और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्ले क्यों, लगातार हमें उसको तिर्यंच में रखना है। यदि वो सम्यक दृष्टि हो जाए तो दोबारा तिर्यंच में नहीं आएगा, इसलिए तिर्यंच का एक ही भाव लंबा लेना है। तो तीन पल्ले वाला भोग भूमि का हम ले सकते हैं। तो भोग भूमि में गया है, एक ही अंतर मुहूर्त में उसने विसंयोजना की सम्यक को प्राप्त करके
अंत में जाके,
और फिर अंत में जाके वो मिथ्यात्व में आया। तो उत्कृष्ट अंतर इतना लंबा गति होगा, कुछ कम तीन पल्ले। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, आपको याद होगा
पल्ले का।
स्त्री वेद का उत्कृष्ट कौन करता है,
पल्ले के असंख्या।
देखो हमने देखा जो गुणित कर्मवंशिक से आया है और जो कालांतर में भोग भूमि में उत्पन्न होता है, पल्ले के असंख्या भाग प्रमाण आयु वाले, और वहाँ स्त्री वेद का बंध करता है, मनुष्य हो या तिर्यंच हो। इसलिए वो कब होगा, आयु के अंत में होगा, इसलिए उसका अंतर नहीं कह दिया उन्होंने। क्या इसके बहुत सारे जो नियम हैं वो हमारे याद तो नहीं रह सकते, हमने बहुत बार देखा इसलिए थोड़ा रिपीट कुछ कुछ करते, नहीं तो फिर यह हमने वो छठवीं पुस्तक में स्वामित्व हुआ था उसको निकाल निकाल कर देखते हैं, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं ना क्या पढ़ाता है, तो फिर वो कैसे घटित हुआ वो याद आता है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है।
स्त्री वेद की बात, उत्कृष्ट होगा एक समय के लिए,
स्त्री वेद का अंतर नहीं है, उत्कृष्ट का अंतर नहीं है,
अनुत्कृष्ट का अंतर होगा।
एक समय पहले लिया बहु के, एक समय पहले लिया उसका उत्कृष्ट, यानी उसने उत्कृष्ट कर दिया, फिर दूसरा कुछ बांध रहा है तो अनुत्कृष्ट हुआ उसका। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। देखो कल मैंने देखा कर्मकांड में पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कहा, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही लिया, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, उसमें पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी लिए, और योनिमति तिर्यंच उसमें स्त्री वेदी यानी भाव वेद लेना, वहां पर स्त्री वेदी तिर्यंच लेना, हम कल देख रहे थे ना वहां पर, और वो लब्धि अपर्याप्त वाला वो अलग ही। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। देखो क्यों नहीं अंतरकाल,
सम्यक्त्व का तो क्रूर कृत्य,
सम्यक्त्व का तो जो क्षायिक मनुष्यों में जिसने पहले तिर्यंच आयु बांधी है और फिर बाद में सम्यक्त्व प्राप्त किया है, क्षायिक होने जा रहा है, वो कृत कृत्य के एक अंतर्मूर्त अभी बाकी, तब मरकर तिर्यंच में जाएगा। उसके पहले की कंडीशन क्या है, गुणित कर्मवंशिक रूप से आया था और अर्लीएस्ट उसने क्षपणा की है, मरकर तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है, तो उसके पहले समय में सम्यक्त्व का मैक्सिमम होगा। सम्यक मिथ्यात्व का मैक्सिमम कब होगा,
अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त करें,
गुणित कर्मवंशिक विधि से आया है, तिर्यंचों में एक भाव में तो उसमें तो नहीं होगा, तो यथा योग्य फिर संगी में उत्पन्न हुआ है दोबारा,
सम्यक्त्व प्राप्त,
सम्यक्त्व प्राप्त किया तो उसको सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होगा, परंतु उत्कृष्ट होगा पर उसका अंतर तो नहीं घटित होगा,
वापस उत्कृष्ट,
क्योंकि एक बार उत्कृष्ट में आया है ना गुणित कर्मवंशिक, तो अनंत काल तक उसका उत्कृष्ट नहीं होगा और उसके लिए फिर वापस नरक में जाना पड़े उसे। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, एक समय के लिए जब उत्कृष्ट होता है तो अनुत्कृष्ट का अंतर होता है, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले है, यानी तिर्यंच में पंचेंद्रिय की बात उठाई थी ना अभी, पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात चल रही है, तो लगातार तिर्यंच पंचेंद्रिय कितने काल तक कितने भव हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं पृथक्त्व पूर्व कोटि, पृथक्त्व यानी कुछ, कुछ में कितने होते हैं, यहाँ संगी और असंगी दोनों को लेना,
95 प्लस तीन पल्ले,
तो यहाँ तिर्यंचों में तो नपुंसक वेदी भी है, स्त्री वेदी भी है, पुरुष वेदी भी है,
संगी असंगी,
और लगातार भव उसके आठ आठ हो सकते हैं,
24 24,
हाँ तो आठ 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 24 संगी के,
24
असंगी के, 48वें बीच में अपर्याप्त का अंतर्मूर्त वाला लेना, और फिर
48
तो 96 तो 96 में लास्ट वाला तीन पल्ले वाला रखना, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल पंचेंद्रियों के भव तिर्यंचों के बताना है, तो 95 पूर्व कोटि प्रत्येक भव उसका पूर्व कोटि वाला लेना और अंत में तीन पल्ले, ये उसकी लगातार तिर्यंचों में रहने की उत्कृष्ट स्थिति काल। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में यानी अलब्धि अपर्याप्तकों में 28 प्रकृति, 28 प्रकृति किसके होती है? सादी मिथ्या दृष्टि। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि शुरू में होगा जब उत्पन्न होता है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे, हम विशेष अर्थ भी देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकन हो सदा देश हो। अशुन्ना।